Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी ने कहा है, पंखों में अगर जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। भक्ति के अंदाज भले ही अलग अलग हों, मगर भक्ति में शक्ति हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। कोई भी कार्य करें, यदि उसमें दम भर दें, शक्ति भर दें, एकाग्र हो जाएं, तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदम अवश्य चूमती है। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
थैंक यू।
हमेशा उड़ान की बात, सफलता की बात हर एक इंसान सोचता है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा हर एक के मन में उठता ही है भ्राता जी, कि मेहनत हर एक व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला कर रहा हो, चाहे व्यापार में व्यापारी कर रहा हो, चाहे बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, हर एक व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन ये जो सफलता नाम की जो चिड़िया है सबको प्राप्त नहीं होती। सूत्र क्या है इसका?
बिल्कुल, देखिए एक्चुअली वो लोग जो बहुत साधारण हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं
जी,
पर देखना ये है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। सफलता के पीछे कई रहस्य हैं, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म भी इसके पीछे एक बड़े जिम्मेदार कारण हैं। दूसरा, वर्तमान में एजुकेशन तो उन्होंने ले ली होगी, मान लो कि इन्हें 10वीं क्लास कर ली, इन्हें 12वीं क्लास कर ली, लेकिन अब उन्होंने टैलेंट्स कितने अपनाए हैं, दूसरी बात। तीसरा, उनका जीवन कैसा है। कई गरीब लोग ऐसे 12-12 घंटे काम करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं
जी, जी।
मान लो उनको 300 रुपए मिले सारे दिन के, तो उन 300 में से 100 फिर ड्रिंकिंग में भी चढ़ा देंगे, अभी बचे 200 घर का सामान और फिर बच्चों की पढ़ाई उनकी, उसमें फिर वो खींचातान करेंगे, तो हर तरह से उनको भारीपन महसूस होगा। तो कुछ गंदी आदतें मनुष्य को सफलता की ओर नहीं ले जाती। अगर मनुष्य का चित्त निर्मल हो, अगर उसके अंदर खुशी बहुत ज़्यादा हो, अगर उसने अपने को बहुत टैलेंटेड बनाया हो और तब वो मेहनत करे, तो मैंने ऐसे देखा, एक की कहानी मुझे याद आ गई, हमारे यहाँ कभी आते थे, अब उन्होंने देह छोड़ दिया है, 10वीं क्लास करके वो ONGC में भर्ती हुए थे और वो डिप्टी डायरेक्टर बनकर रिटायर हुए। बुराइयों की ओर नहीं गए, मेहनत की, नए नए टैलेंट्स प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। ये नहीं भाई हमें तो ये काम करना बस हो गया ना, 10,000 रुपए सैलरी मिल रही, चल रहा काम, गुजारा चल रहा है हमारा, तो
लेकिन हमेशा एक आगे बढ़ने की
ललक
चीजों
बस उनको रहा, हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार क्या हुआ, मशीन लगी हुई थी, वो ड्रिलिंग हो रही थी, तो अचानक नीचे कुछ गड़बड़ आ गई होगी, हल्की मिट्टी आ गई होगी, पूरी मशीन नीचे उतरने लगी धीरे धीरे, रुकी नहीं रही, भगदड़ मच गई। मशीन करोड़ों की थी, सब परेशान हो गए, क्या करें, इसको बुलाएं, उसको बुलाएं, वो देख रहा था सब
जी।
उसने कहा ठहरो, तख्ते बिछवा दिए कुएं पर, एक ट्रैक्टर मंगवा लिया, उसमें रस्सी बांध दी और मशीन बस थोड़ी ऊपर रह गई थी 5 फुट, अब उसको नीचे आने में भी 10 मिनट लगने थे, तब तक उन्होंने सब इंतजाम कर लिया, सब वहाँ था ही, और जैसे ही मशीन बस 4 इंच ऊपर रही, फटाफट बोल्ट खुलवाए उसने और रस्सी बांधी और ट्रैक्टर से खींचवा ली। उसके जो बॉस थे वो इतने प्रसन्न हुए कि लड़का इतना बुद्धिमान, फर्स्ट से आगे बढ़ा दिया। फिर उसको फ्रांस में इंजीनियरिंग करने के लिए 6 मास का कुछ रिफ्रेशल कोर्स था, वहाँ भेजा और जैसे मैंने कहा वो डिप्टी डायरेक्टर बनकर रिटायर हुआ। तो देखिए, मनुष्य को मेहनत करनी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नई नई योग्यताएं सीखनी है, बुद्धि का भी सदुपयोग करना है। अभी और सबकी बुद्धि क्यों नहीं काम किए, बात तो छोटी सी थी, कंफ्यूज हो गए क्या करें क्या करें, अभी ये कितने करोड़ों की मशीन नष्ट हो जाएगी और हमारा क्या होगा फिर
जी। मतलब तो, समस्या की तरफ बुद्धि चली गई लेकिन
समाधान
क्या
की
हो
तरफ
सकता
किसने
है?
नहीं सोचा, उसने अपनी बुद्धि को शांत रखा और देख रहा था बस कि मशीन आ रही है ऊपर से, धीरे आ रही है, फास्ट गति से नहीं आ रही है, बहुत धीमे आ रही, तो क्या संभव है। उन्हें सोच लिया कि यहाँ तख्ते बिछा लो, मशीन को इस पे टिका लेंगे और खींच लेंगे। तो ये सफलता के कुछ सूत्र हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अब ब्रदर जी, जो अंतिम पंक्तियां जो कवि ने कही हैं कि भक्ति में गर शक्ति हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो वास्तव में भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में कैसी शक्ति भरी जाए जो भगवान मिल जाए, वो दूर ना रहे हमसे।
बिल्कुल ठीक बात कही है ये
जी।
देखिए सचमुच भक्ति भी सुंदर चीज रही है, हम सब ने बहुत की है, जन्म जन्म की है, हजारों साल की है
जी।
और भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं, अब जब हमें प्रभु प्राप्ति हो गई तो भक्ति की जरूरत नहीं रही। जैसे कोई बच्चे ने हाई स्कूल किया हो, अब वो ग्यारहवीं में चला गया हो, वो क्यों हाई स्कूल की किताबें पढ़ेगा फिर। लेकिन भक्ति सच्चे मन से करना, प्यार से करना, निष्काम भाव से करना, एकाग्रता के साथ करना, चार बातें हो गई
जी।
अगर भक्ति में एकाग्रता नहीं, पूजन पाजन तो यहां कर रहे और बुद्धि भटक रही बिजनेस में, दो घंटे बैठे तो हैं पूजा पाठ करने में लेकिन मन एकाग्र नहीं,
कहीं कई बार लोग मंदिरों में जाते हैं लेकिन उनका ध्यान चप्पल पे रहता,
चप्पल पे रहता, कोई चोरी न कर ले मेरे चप्पल। फिर प्यार नहीं है, एक स्वार्थ लेकर गए हैं, बच्चे को बीमारी है, हे प्रभु वो ठीक कर देना बस, तो रोज आएंगे तुम्हारे पास, रोज प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भक्ति में कामनाएं आ गई, भक्ति सच्चे मन की नहीं रही और उस माहौल में प्योरिटी नहीं रही। देखिए चाहे पुजारी हो, कोई हमारी बात का बुरा ना माने, सब में लालच हो गया, अधिक से अधिक पैसा भक्त लोग डाल जाएं, हमारे परिवार का अच्छा काम चले, तो उन्होंने अपनी प्योरिटी को छोड़ दिया। उन्हें ये भूल गया कि जिन देवी देवताओं की तुम आराधना कर रहे हो, जिनके मंदिर बनाए हैं, वो संपूर्ण प्योर थे। देखिए वहाँ ब्राह्मण के अलावा और किसी को छूने नहीं देंगे, वो स्नान कराएगा तो वही कराएगा। इसका कारण ये कि वो एब्सोल्युटली प्योर थे। तो जो पंडित है उसको भी तो कुछ प्योरिटी अपनानी चाहिए ना, कुछ तो संयमित जीवन होना चाहिए। चलो वो ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण रूप से न करे, पर एक संयमित जीवन, विचारों की शुद्धि, निर्लोभ जीवन, सबके लिए कल्याणकारी भावना, ये तो होनी चाहिए। लेकिन वो भक्ति भी कर रहा है और वहाँ क्रोध भी कर रहा है, लोगों को लताड़ भी रहा है, तो वहाँ प्यार का माहौल नहीं रहता, एक ये कारण हुआ। दूसरा, कुछ ऐसी भक्ति हो गई आजकल शक्तियों की कि बलि चढ़ाने लगे और सोचने लगे देवी तो बलि से ही राजी होती है, ये गलत मान्यता हो गई। तो पूरी इम्प्योरिटी आ गई ना भक्ति में, तो भक्ति की शक्ति समाप्त हो गई। नहीं तो सचमुच भक्ति में भी शक्ति थी, मनुष्य भक्ति के बल पे बड़े बड़े काम कर गए हैं, इतिहास में बहुत बड़े बड़े काम हुए, धर्म के क्षेत्रों में बहुत बड़े काम हुए। तो इसमें हमें शुद्धि लानी चाहिए, एकाग्रता लानी चाहिए, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके लिए संपूर्ण प्यार होना चाहिए और निष्काम भाव होना चाहिए।
शायद ये सारी चीजें आजकल देखने में नहीं मिलती हैं, शायद इसीलिए आज का व्यक्ति या खासकर आज का युवा वर्ग धर्म से, अध्यात्म से या भक्ति से विमुख होता चला जा रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत
बिल्कुल होता यही है। कारण है कि उसे लगता है ये सब तो बेकार की चीजें हैं, इन सबसे भला मिलेगा क्या। लेकिन मैंने ऐसे भी युवक देखे जिनके अंदर बहुत भावना होती है, जो स्वतः ही मंदिरों में जाते हैं। हमारे यहाँ तो आने वालों युवकों की संख्या ही बहुत अधिक है, अब भी हमारे यहाँ जो 20,000 लोग हैं उसमें से अगर आप घूम के देखो तो कन्याएं और कुमार, छोटे बच्चे बहुत दिखाई देंगे और क्लास में मेडिटेशन में सबसे आगे आके बैठते हैं। मैं अभी एक जगह था करीमनगर, 10 बच्चों का ग्रुप था, 5 लड़के थे 5 लड़कियां, किसी विशेष सेंटर से आए थे, बिल्कुल आगे आगे बैठते थे, एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के, और बाकायदे एकाग्र, कोई चंचलता नहीं। मैंने उनकी बड़ी महिमा की, ये तो फूल हैं तुम्हारे, ये तो सचमुच कोई बहुत अच्छी आत्माएं तुम्हारे घरों में आ गई हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवक हैं जिनमें इन चीजों के लिए भावनाएं अभी भी हैं।
बिल्कुल। पहला मेल आया है मुंबई से है और ये कहती हैं कि रिस्पेक्टेड सूर्य भाई जी नमस्ते, काइंडली गाइड मी एज यू ऑलवेज से दैट वी शुड ओनली गिव पॉजिटिव एनर्जी टू द पर्सन व्हेन हिज हर कॉन्शियस माइंड इज इनएक्टिव एंड सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। कैन इट बी पॉसिबल दैट आफ्टर द पर्सन स्लीप्स इन द नाइट वी कैन गिव इट टू हिम हर इन द मिडनाइट एज इन द मॉर्निंग इन मुंबई ऑल पीपल गेट अप अर्ली टू लीव फॉर देयर जॉब एंड हैव जस्ट अ सिंगल रूम or two room and there are 6 to 7 members in the house. So to get the quiet place to do meditation is very difficult. Please reply and how many days, how many times to get the proper solution. Sheetal ji, Mumbai se.
देखिए जब भी सोया हुआ है कोई व्यक्ति चाहे 12 बजे है चाहे 1 बजे है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और ज्यादा ही एक्टिव है
जी.
इसलिए उस समय उसको एनर्जी देता कुछ थॉट्स देना ये बहुत ही यूजफुल रहेगा कल्याणकारी रहेगा. अब मुंबई जैसे शहरों में ये घरों की समस्या तो सबके पास है. किसके पास तो एक ही रूम होता है 7 लोग उसी में सोए रहते हैं. किसके पास 2 रूम होते हैं कई लोग सोए रहते हैं फिर टीवी फिर कोई स्टूडेंट भी उनमें होगा तो एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है. अब स्टूडेंट चाहेंगे हम पढ़ लें दूसरे लोग चाहेंगे टीवी देख लें कोई स्टूडेंट भी चाहेगा. इसलिए जब भी मौका मिले उठ के थोड़ा सा भी योग अभ्यास कर लें और सोए हुए व्यक्ति को एनर्जी भी दें और कुछ अच्छे संकल्प भी दें. रही बात योग अभ्यास कैसे करें, देखिए वो कहीं भी किया जा सकता है. भले एक रूम है और 5 लोग उसमें सोए हुए हैं आप बिल्कुल अलर्ट होकर जब भी आपकी आंख खुले 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और जब सब सोए हैं तो आपको और अच्छा कंसंट्रेशन होगा. तो बिल्कुल अभ्यास करें कि परमात्मा की एनर्जी आपको आ रही है बहुत अच्छा अभ्यास कर लें 5 मिनट फिर उनको दे दें जा रही है कुछ अच्छे संकल्प भी उन्हें दे दें फिर भले ही सो जाएं. जैसा क्योंकि अगर वो रात को 1 बजे उठे 2 बजे उठे तो उन्हें सोना ही होगा फिर भले वो सो जाएं तो ये एनर्जी और ये थॉट्स पावरफुल्ली प्रभाव डालेंगे.
बिल्कुल मतलब रात को किसी भी समय दिया जा सकता है जब व्यक्ति सोया हुआ है तो. और जहाँ तक रही आपने योग की बात कही वो कहीं भी किया जा सकता है यदि 5-7 लोग हैं भी तो भी बैठ करके आराम से किया जा सकता है. तो बाह्य जो नॉइज है ब्रता जी या भगदड़ हो रही है कई बार वो कॉमेंट्स भी कोई कर देते होंगे कि बड़े आए हैं योग कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो करते ही हैं घर में तो ऐसे में थोड़ा सा शायद इनके प्रश्न से लग रहा है कि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है. ऐसे में क्या किया जा सकता है?
ये बहुतों के साथ होता है कि लोग कमेंट्स ज्यादा करते हैं
योगी बनने
लगे चले हैं ध्यान लगाने इनका लगेगा ध्यान ये करेंगे दुनिया का कल्याण बड़े बड़े महात्मा तो कर नहीं पाए बड़े बड़े गुरु तो कर नहीं पाए फलाने गुरु का तो इतना बुरा हाल हो गया जेल में पड़ा है ये चले हैं कुछ करने. लेकिन इन कमेंट्स से भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. हम ये सब बातें सुन के अपने उस लक्ष्य को ना भूलें कि योग तो हमें करना ही है और ये याद रखें कि हमारा योग ही परिवार में सुख शांति के वाइब्रेशंस बनाए रखेगा. हमारे योग में बहुत बड़ी ताकत है जो दूसरों को भी परिवार को भी सफलता दिलाएगा उनके विघ्नों को भी नष्ट करेगा. इसलिए कमेंट्स से अप्रभावित रहते हुए और जो चारों नॉइज होती है वास्तव में नॉइज में तो योग बहुत अच्छा लगेगा लेकिन हम उस पर ध्यान न देखें हमारे चारों ओर क्या हो रहा है. देखो मैं आपको अनुभव सुनाऊं. कल हमारे पास के कमरे में रिपेयरिंग हो रही थी ठक 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 हथौड़ी लग रही थी बार बार अभी लेकिन मैं ऐसा सोया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ हो रहा है क्योंकि मैंने इसको अवॉइड कर दिया कि इनका काम है
वो एक बार शायद वो ध्यान में चला जाता है कि अरे ये ठक ठक हो रहा है बंद हो तो मुझे नींद आए तो शायद ये ज्यादा प्रॉब्लम
और वो इंतजार करने लगते हैं कि इन्हें कहूं जाके ये आवाज ना करें जब तक ये आवाज करेंगे मुझे नींद आएगी नहीं. मैंने सोच लिया ठीक है ये बेचारों को काम करना है वो कब तक हमारे लिए रुकेंगे हमें सोना है उन्हें अपना काम करने दो और फट से नींद आ गई. तो नॉइज हमारे लिए कहीं डिस्टर्बेंस नहीं बन सकती अनलेस हम उसे एक्सेप्ट करें और उससे डिस्टर्ब होना शुरू कर दें कि क्या हो रहा है ये देखा ये नहीं होना चाहिए शांति रखनी चाहिए ये हमें सोने नहीं देते ये सब नहीं जान तो अपना काम कर रहे हो ओके. तो नॉइज में कंसंट्रेशन सुंदर होगी ये बहुत अच्छा अनुभव होगा. नॉइज हमारे और संकल्पों को शांत कर देगी और बहुत अच्छी एकाग्रता होगी.
चलिए बहुत सुंदर. तो शायद शीतल जी को भी अब अच्छी एकाग्रता का एक सुंदर तरीका मिल गया है कि भले ही बाहर आवाज होती रहे और साथ ही रात को भी जब भी नींद खुलती है तब भी एक अच्छे वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं. ये भी एक सुंदर बात आपने कही. ब्रता जी ये राजकुमार जी मेरठ से अगला मेल भेज रहे हैं और ये कहते हैं कि कुछ समय हुए हैं मुझे विद्यालय जैसे जुड़े हुए, और जैसे जैसे मैंने ज्ञान को समझा है तो मुझे लग रहा है कि मैंने इस ईश्वरीय ज्ञान में आने में बहुत देरी कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाऊँ, तो कृपया कुछ ऐसा उपाय बताएं कि भले ही मैं अंत में आया हूँ लेकिन सबसे पहले पहुँच जाऊँ। राजकुमार जी मेरठ से।
अब इनमें जागृति आ गई और इनको लगा कि मैं बहुत लेट आ गया हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग 20 साल से 30 साल से 50 साल से प्रभु मिलन का सुख ले रहे हैं। उन्होंने योग अभ्यास से बहुत ज़्यादा गोडली अचीवमेंट्स ले ली हैं, तो इन्हें लगता तो है कि काश हम भी पहले आ गए होते, कहाँ कहाँ भटक रहे थे, भिन्न भिन्न संप्रदायों में ढूंढ रहे थे सत्य को, कोई कुछ कह देता था कोई कुछ, तो ऐसे इनकी बात नहीं, हजारों लोग आए हैं और बड़ी बड़ी क्लासेज में ये प्रश्न सामने आता है कि हम लास्ट आए हैं, हमें पश्चाताप तो हो रहा है कि पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता, पर आते कैसे? वो तो हर एक कहने का समय ही है, जब भाग्य उदय हुआ तब वो आ गए। अब ये सोचना है इन्हें कि हमें कुछ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, अगर ये लास्ट आकर फास्ट जाना चाहते हैं, अगर ये वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं जो दूसरे लोगों ने 20-25 साल में अचीव किया, तो इट्स पॉसिबल। इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये असंभव है, लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने अभी अपनी यात्रा शुरू ही की है। इस बात को भूल कर ये संकल्प कर लें कि ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और एक धुन लगा दें, जैसा आपने कल चर्चा की, एक धुन लगाएं और कुछ चीज़ों से अपने को मुक्त कर लें। अब जब इन्हें मैं ऐसा कहूं कि 2 साल में या 3 साल में 25 साल वालों ने जो प्राप्त किया वो प्राप्त करना है, एक लक्ष्य ले लें, तो इन्हें कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा और कुछ डिसिप्लिन्स को स्ट्रिक्टली अपना लेना पड़ेगा। छोड़ दें ये व्यर्थ की बातें, छोड़ दें ये संसार की व्यर्थ की अनावश्यक इच्छाओं को, छोड़ दें ये उन विषय विकारों को जिनके कारण इन्हें जीवन में डिस्टर्बेंस हुआ है। बस संकल्प करें तो फटाफट इनके अंदर छोड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो जो भी त्याग करना आवश्यक है, ये मनुष्य को खुद पता चलता है कि मुझे दृष्टि से क्या त्याग करना चाहिए, बोल में मुझे क्या त्याग करना चाहिए, कान क्या सुनते हैं क्या छोड़ देना चाहिए, व्यवहार में मुझे क्या छोड़ देना चाहिए, और इस सब त्याग का एक ही लक्ष्य है कि एकाग्रता सुंदर हो जाए। त्याग के पीछे जिस चीज पर हम फोकस करेंगे, एकाग्रता को बीच में रखते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए, हम सोचें मुझे क्या क्या छोड़ देना है। दूसरों को देखने की आदत है, विचार चलने लगेंगे, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। अब दूसरों को देखना छोड़ दें, अब संकल्प करें जन्म जन्म दूसरों को देखते आए हैं, अब अपने को देखना है, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को देखना है, अपनी शांति से स्वयं को मिलना है, जो भी हमारे अंदर बहुत सारे वरदान भरे हुए हैं उनको प्राप्त करना है, फिर से हैं वो हमारे अंदर, उन्हें फिर से उजागर करना है। एक तो इस चीज पर बहुत ध्यान दें, जन्म जन्म मनुष्यों से बात करते रहे, अब अंतर्मुखी होना पड़ेगा, थोड़ा मौन रखना पड़ेगा बीच बीच में, जन्म जन्म मनुष्यों से बात करते आए, अब जरा भगवान से बात करें, अब हम उसके समीप जाएं। जन्म जन्म हम सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते रहे, अब हमें संकल्प करना है हम भगवान से सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो पहले इस तरह स्वचिंतन करते हुए ये अपने को एकाग्र करें। स्वचिंतन श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए परम आवश्यक है, इसके लिए रोज आधा घंटा हर साधक को निकालना चाहिए और अपने से बात करनी चाहिए, किस लिए हम भगवान के पास आए हैं, अब मुझे वही करना है जिसके लिए हम बाबा के पास आए हैं। इन्हें सोचना चाहिए लोगों ने 25 साल में जो प्राप्त किया है मुझे 2 साल में प्राप्त कर लेना है, मैं ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, तो ये स्वचिंतन इनको बहुत उमंग उत्साह में रखेगा। अब जो करना है उस पे इन्हें ध्यान देना है। इन्हें निश्चित रूप से अपना चार्ट लिखना चाहिए, चार्ट में योग कितना रहा, कुछ धारणाएं ये चुन लें, ये धारणाएं सारे दिन में हमने किया नहीं, जैसे मुख से कोई कटु वचन तो नहीं बोला, व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचाया, कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसको हम पाप कर्म कहेंगे। ऐसे 5-7 पॉइंट्स का एक चार्ट बना लें। चार्ट उन्नति का एक सर्वोत्तम तरीका है। चार्ट लिखने से मनुष्य को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और वो बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों से बचा रहता है। देखिए, एक व्यक्ति ये सोचता है मैं तो सारा ही दिन बाबा को याद करता हूँ करती हूँ, लेकिन अगर वो चार्ट लिखे तो उसे पता चलेगा कि सारे दिन में कितना कम योग होता है, तो एक जागृति आएगी। दूसरा, ये नियम बना लें कि सवेरे 3:30 बजे उठकर बहुत अच्छी साधना करनी है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, ईश्वरीय सेवाओं में भी बहुत योगदान देना, यानी भगवान को राजी करना है। राजी होने के बाद वो हमें वरदान दे देता है, तो इन्हें भी उसको राजी करके उससे वरदान लेना है। और भगवान राजी होता है सत्यता पर, भगवान राजी उन पर होता है जो दूसरों को सुख देते हैं, भगवान प्रसन्न उन पर होता है जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान राजी उन पर होता है जो उसके कार्यों में सच्चे दिल से मदद करते हैं। भगवान संसार बदलने आया है, जो उसको मदद करते हैं किसी भी तरह की तन मन धन की प्योरिटी की, उस पर भी भगवान बहुत राजी होता है। तो इसे ऐसे कुछ डिसिप्लिन बनाने चाहिए और सेवाओं में भी तत्पर होना होगा
जी।
और जो मोहमाया है उससे थोड़ा अलग, हम ये नहीं कहेंगे अपना कामकाज छोड़ दे, ये अच्छी कमाई ना करे, वो भी ये करे, लेकिन इन सब डिसिप्लिन्स को अपनाते हुए ये अगर 6 मास पहले बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो इनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी, इनके अनुभव बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अनुभव ही फिर मनुष्य के अच्छे गाइड बनते हैं। मनुष्य दूसरों से गाइडेंस चाहे कि भाई क्या करें क्या करें, ये करें या ये करें, उससे अच्छा होता है उसको अच्छे अनुभव हो जाएं, तो अनुभव उसको रास्ता दिखाते हैं, ये इन्हें करना है।
बिल्कुल प्रति जी, कई बार जैसे इन्होंने राजकुमार जी ने प्रश्न किया है, और जब ज्ञान में ऐसे नए आते हैं तो जिस प्रकार इनको उत्साह है कि बस मैं अब लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट जाऊं, तो होता ये है कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ के, व्यवसाय कर रहे हैं छोड़ दिया, स्टडी कर रहे हैं छोड़ दिया, कि चलो अब तो विनाश होना है, भगवान आए हुए हैं सब कुछ उनसे लेना, तो सब छोड़ छाड़ के लग जाते हैं। ये चीज़ कहाँ तक उचित है और क्या इससे सफलता प्राप्त हो पाएगी?
अगर एक विद्यार्थी है वो अपनी स्टडी छोड़ देता है तो आगे चल के उसको बैड फीलिंग होगी
जी,
और उसको निश्चित रूप से पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलत निर्णय लिया था, क्योंकि ब्रेन की एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज होना ही चाहिए
जी,
चाहे वो स्टडी में हो चाहे लौकिक कार्यों में हो। इसलिए न तो लौकिक कार्य छोड़ना है न स्टडी छोड़नी है, बल्कि मैं एक शब्द बोलूँगा, स्टडी को एंजॉय करना है, बिजनेस को एंजॉय करना है, और एक सुंदर फीलिंग ले ले, बाबा मेरे साथ है, भगवान साथ है और हम पढ़ रहे हैं, एंजॉय करेंगे तो योगी भी अच्छे बन जाएंगे। छोड़कर कोई भी योगी नहीं बन सकता, मैंने देखे,
मतलब अपने उन्हीं कर्मों में हम ईश्वर को भी शामिल कर ले,
और
तो लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ छोड़ा।
बिल्कुल
जी, जी, जी। मैंने ईश्वरीय महावाक्यों को जो पढ़ा है उसमें पाया है कि एक दिन में तुम्हें 1 वर्ष की साधना करनी है, ये भी एक ईश्वरीय महावाक्य है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में हम ऐसा कुछ कर जाएं कि 1 वर्ष की साधना हो जाए? तो शायद इनका जो प्रश्न है इन्हें भी कुछ सुंदर उत्तर मिल जाएगा।
देखिए, समय बहुत कीमती है, ये
जी
पुरुषोत्तम संगम युग का समय 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, यानी 1 मिनट में 1 वर्ष के भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए अगर 1 दिन में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौन रखकर, चारों ओर से अपने को समेट कर, एक सुंदर प्लानिंग के साथ सारा दिन बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लें। ये वीक में 1 बार ऐसा किया जा सकता है, जब छुट्टी का दिन हो या रिलैक्स हो, बिजनेस वालों की दुकान बंद हो, विद्यार्थियों को छुट्टी हो, अपना ऐसा होमवर्क भी पहले ही कर लें तो 1 दिन स्पेयर कर लें और सवेरे से शाम तक बहुत सुंदर अभ्यास कर लें, लेकिन विद प्लानिंग
जी।
थोड़ी ईश्वरीय महावाक्य भी पढ़ने हैं, योग भी करना है, थोड़ा घूम फिर लें, एकांत में स्वचिंतन करें, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करें, तो 1 दिन बहुत आनंदकारी होगा। और जब मनुष्य का एक दिन आनंदकारी होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे दिन पर आता है, और उसमें मनुष्य कुछ अच्छी चीजें ऐसी सीख लेता है जिसको वो कंटिन्यू करता है, हर व्यक्ति करेगा और वो उसके लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है।
बिल्कुल, मतलब एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, थोड़ा सा बैलेंस रखें, सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट वाली बात कही है राजकुमार जी ने, वो सबके लिए सहज और सरल हो जाएगा। रहता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बहुत सुंदर प्रश्न रहा कि कैसे हम अंत में आते हुए भी बहुत आगे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि बात लगन की है, बात निष्ठा की है, बात परिश्रम की है, बात धुन की है। यदि आपने एक बार धुन लगा दिया कि बस हमें करना है, तो लगता है कि सचमुच ईश्वर की मदद जरूर मिलती है। और ये तो ईश्वरीय मार्ग है, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर कदम रखते हैं तो उन्होंने तो वचन दिया है, तू मेरे मार्ग में कदम रख के तो देख, मैं तेरे मार्ग में फूल ना बिछा दूं तो कहना। तो ये भगवान के महावाक्य भी हैं, उसकी प्रतिज्ञा भी है। तो हम तन्मयता पूर्वक बहुत धुन लगा के लगन से इस पथ पे आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और जो भी आपकी चाहना है वो भी पूर्ण होगी। तो आप सतत आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।